नेक्स्ट गजबे पे जाते हैं, 627 आ गया। गजबे अहज़ाब भी 627 में हुआ, मुसलमानों को बेहतरीन किस्म की फतह मिली। अब हुआ क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मुसलमान सरहदों पे थे, मदीना इज सिक्योर, बट मदीना शहर के अंदर अब यहूद का बस एक कबीला रह गया हुआ था। पहला कौन सा निकला, कैन का, दूसरा बनु नज़ीर, तीसरा बनु कुरैज़ा। छोटा सा था, इनके जो कह लीजिए क्या बोलते हैं, हवेलियाँ गड़ियाँ बोलते थे, वो मदीना शहर के अंदर थी। जैसे अब आपका एक टाउन है तो एक घर मुसलमानों का हो तो एक यहूद का हो, ये वहाँ रहते थे। इन्होंने गज़वे खंदक के दौरान मुसलमानों के साथ धोखाबाजी की थी। मीसाक-ए- मदीना इनके साथ जो अल्लाह के नबी ने पहले ट्रीटी कर लिया हुआ था मदीना में आते हुए, उसको अबाइड बाय नहीं किया, रूल्स को ब्रेक किया, और अल्लाह ताला ने फिर इनको मज़ा चखाना था। देखिए ज़रा सोचिए, 1 महीने की जंग से निकल कर घर जा रहे, और जिब्राइल आकर कहते अल्लाह के नबी फरिश्तों ने तो नहीं अभी हथियार उतारे, आप कैसे उतार रहे हैं। सुभान अल्लाह, इशारा था। चलिए गजवा बनु कुरैज़ा को सबक चखाइए, बड़ा दिलचस्प वक्त। साद बिन माज हीरो हैं इस जंग के। गजवा खंदक हुई था तो उनके इधर ये जो कलाई है ना, मेन रग होते ही कट गई, खून निकल आया। लेकिन इन्होंने अल्लाह से एक दुआ की कि अल्लाह मुझे बनु कुरैज़ा का अंजाम दिखाए बगैर ना मौत देना। खून रुक गया। जब गज़वे बनु कुरैज़ा का मौका आया, उन्होंने इन्हीं का नाम लिया, उनका ख्याल था ये हमारे हमायती हैं, हमारा साथ देंगे। बहरहाल डिटेल्स को नहीं जाने का वक्त, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन माज से कहा कि जाइए, आप इनके बारे में जो फैसला करें वो हमें मंजूर है। आपने कहा कि इनके मर्दों को कत्ल किया जाए जिन्होंने गदर किया, औरतों और बच्चों को गुलाम और कैदी बनाया जाए। अल्लाह के नबी की गवाही है कि जो साद का फैसला था वो आसमानों पर रब का फैसला था। कभी बनिए तो वो, हमारे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो दरियाओं के रास्ते बदल दे, पहाड़ों में जगह दे। वो कहते हैं ना कि ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदाई। तो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अपने बच्चों में ऐसा ईमान भर के फौत हो, दुनिया से तो जाना है ना, अपने बच्चों को ईमान में भर कर जाइए। पैसा सोना चांदी उनके नसीब का उनको मिल जाएगा। जो पैसा हम उनके ऊपर लगाते हैं ना, अगर उनकी तरबियत में लगा दें तो बहुत फ़ायदा हो। बहरहाल गज़वे बनु कुरैज़ा में भी मुसलमान जीत गए, इस कबीले को हमेशा के लिए मदीना से निकाल दिया गया। और इसके बाद अगला साल आता है 628। ये है वो चीज़ कि जिसके बाद वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होगा आपको, और वो है सुलह हुदैबिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया, और वो ख्वाब क्या था कि आप उमरे पे गए हैं। अब आप देखिए 6 साल हो गए ये मक्का से मदीना, अब तो ट्रेन पे 2 सवा 2 घंटे में आप पहुंच जाए। और सहाबा का जन्म पल था, उनका मदर टाउन था, अल्लाह के नबी ने ख्वाब बयान किया कि हम उमरा करेंगे। देखते ही देखते 1400 लोग तैयार हो गए। इमेजिन तो कीजिए कितनी तड़प थी, बगैर किसी हथियार के वहां चले गए। एहराम की हालत, हदी के जानवर साथ थे, उस दौर में जानवर साथ लेके जाते थे, लेकिन ऐन हरम की हदूद के करीब हुदैबिया के मुकाम पे रोक लिया गया। मक्का वालों ने अना का मसला बना लिया, कुछ थ्रेट भी था, खौफ भी था कि नहीं जी आप तो नहीं जा सकते, बड़ी जंग हो जाती। अल्लाह के नबी ने वफद बनाए, भेजा हजरत उस्मान को भेजा, जो अपने ही घर के बच्चे थे और कुरैशी भी थे, कि उनको बताओ कि हम जंग करने थोड़ी आए हैं। लेकिन याद रखिए, जब बंदे को अल्लाह ने किसी चीज़ से गुजारना होता है ना, तो अल्लाह गुजार लेता है। अब तसव्वुर में लाइए, आप सब बेहतरीन फ्लाइट्स में आए, खाते पीते मज़े करते, अच्छी जूतियाँ पहने, एसी माहौल करके आप जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे, और आगे से कह दिया जाए वापस जाओ, कोई मसला है नहीं जाने देंगे। मदीना आ गए, अब आगे मक्का नहीं जाना, चलिए मदीना से बैक होम। क्या हाल होगा हमारा, इमेजिन तो कीजिए। सुलह हुदैबिया जो था, ये तो आप पढ़े सुरफत, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी वीकली क्लास जो हमारी वंस अ वीक क्लास होती है उसमें इसको इन डेप्थ पढ़ा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना शायद कभी कुरान को एंजॉय किया हो जितना मैंने सूरत फतह को एंजॉय किया। बहरहाल आप इमेजिन कीजिए, मदीना से मक्का 500 माइल्स है या किलोमीटर है, आई थिंक सो, उस दौर में 8 दिन लगते थे, पसीने गर्मी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जा रहे हैं, और वहाँ से वापस आ गए विद आउट डूइंग उमरा। आप जरा सा रुकिए, ये है आपके मेरे सीखने का सबक। इतात का अजर इबादत के अजर से ज्यादा है। सहाबा ने ये खुदैबिया के मौके पर सिखा दिया। बात मानना सीखो, किसकी? अल्लाह की और लीडर की, उलुल अम्र की। और उस दौर के उलुल अम्र नबी सल्लम थे, और आज नबी सल्लम की सीरत और सुन्नत को मानो। कितना दूर था हुदैबिया से सफ़र, जाके देख लीजिएगा, आपको करा देंगे ज़्यारत, पैदल जा सकते हैं। लोग कितने? 1400। कुछ सीसी कैमरे लगे हुए थे? नहीं। उन 1400 में से 14 नहीं, 200-300 भी इधर उधर से कोनों से गुजर के निकल के उमरा करके आते हैं। अल्लाह के नबी को पता भी नहीं था चलना, हर एक पे नजर थोड़ी है। 1400 लोग बहुत बड़ी तादाद होती है। एक सहाबी भी डिसिप्लिन को और रूल को ब्रेक करके नहीं गया। इतात कीजिए, ये बातें तो अल्लाह कबूल करेगा ही। बात मानिए नबी की, फिर आपको बरकत मिलेगी। आज हम मुसलमान बात नहीं मानते, करें क्या? इतात नहीं है। अतीउल्लाह किसी हद तक है, अतीउ रसूल पे सवाल है। अच्छा ये हदीस है, अच्छा ये सुन्नत है, ओके फर्ज तो नहीं है ना। अच्छा जाना फर्ज है कि सुन्नत है कि नफिल है? अच्छा ना भी जाएंगे तो क्या है? ये हाल है हमारा। सहाबा डिसिप्लिन को मानते थे। आज आप किसी ग्रुप में और आपको कहा जाए कि आप सारे इस जगह पे इकट्ठे हो जाए, आप कहते मैं खतीब में दो नफिल पढ़ के आ जाऊँ, देखना मैंने दो नफिल पढ़ पढ़ा के भी आ जाना है। बस वाला काफिला आपके लिए रुके और आप जाके दो नफिल पढ़े, आपको अजर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने डिसिप्लिन तोड़ा। हम जी जो भाग दौड़ के गिनती वाली नेकियां करते हैं ना, एक सिस्टर मुझे मिली पिछले सालों में, कहीं उनका शायद लॉटरी में वीजा निकला था, 21 डे का पैकेज था। कहती मैंने माशाल्लाह 22 उम्रे की है, 22 उम्रे की है। हैं वो कैसे? कहती रोज जाती थी उधर, किया रोज, किया रोज, 22वां कैसे किया, एक दिन में दो किए। वो कहते हैं ना गिनते हैं हम उंगलियों पे गिनते हैं, बात नहीं मानते हैं। और ना एक उम्रे से हमारे अंदर कोई फर्क आता है, उम्रे पे आके भी आ जाए तो बड़ी बात है, चंद दिन नमाजें ठीक रहती हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। कहते कोई बात नहीं, पिछला हिसाब क्लियर कर रहे हैं, खाता साफ है, एक और उम्रा करेंगे, अगला भी साफ कर लेंगे, पैसे हैं, उम्रा करना आज क्या मुश्किल है? क्योंकि अल उम्रा तो इल उम्रा थी कफ्फारा तो लिमा बही ना उमा, हमारा आज ये हाल है। हुदैबिया का डिसिप्लिन नहीं कोई गया। और जो सबसे वहां का प्रॉब्लमेटिक मामला देखिए, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अपने हराम खोल दो, हदी के जानवर स्लॉटर कर दो, कुर्बान कर दो, कोई उठ ही नहीं रहा। अब नबी के साथ सहाबा का वो हाल था कि जहां पसीना गिरा वहां उनके खून गिरता था, नबी के पसीने को जिस्म पे मलते थे। समय ना बताना आपका स्लोगन था, उठ ही नहीं रहे। अल्लाह के नबी एज अ लीडर, नबी के लिए एक बड़ा शौक था। अंदर आ गए अपने खेमे में, और उस सफर में आपकी जौजे मुख्तरमा उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा थी। वो शौहर की रग पहचानती थी कि माई हस्बैंड इज डिप्रेस्ड नाउ। अच्छी बीवियों को ऐसा होना चाहिए। इस वक्त मेरा मियाँ वीक फील कर रहा है कि क्या करें? कहला कहीं भी फिक्र ना करें, बच्चे हैं ना, आज की जुबान में आप कह देना बच्चे हैं, सदमे में हैं, टॉर्चर में हैं, दे कैंट एक्सेप्ट इट, कबूल नहीं कर पा रहे। अच्छा फिर क्या करें? कहा आप जाइए, आप अपना काम करिए, फिर देखें क्या होता है। अच्छी बीवियों के अच्छे मशवरे। वाकई अल्लाह के नबी ने जाकर जूं ही अपना एहराम खोला और अपने बाल काटने लगे, फिर सहाबा का जब्ते बंधन टूट गया। ऐसे वो जाकर एक दूसरे के भी बाल काटने लगे कि गर्दने काट देंगे। हिचकियां रो रहे हैं। ये वो वक्त है कि जहां हजरत उमर फारूक कहते हैं कि लोगो मैंने जिंदगी में अगर किसी चीज पर गम खाकर तौबा के तौर पर गुलाम आजाद किए, सदका दिया, तो वो मेरा ये हुदैबिया के मौके पे नबी से। जरा सी मेरी आवाज ऊंची हो गई। अल्लाह के नबी आप सच्चे नबी नहीं है, अल्लाह के नबी इस्लाम सच्चा नहीं है, अल्लाह के नबी आपको अल्लाह ने हक पे नहीं भेजा। हाँ उमर ऐसे ही है, तो फिर आप क्यों दब रहे? जैसे बच्चे जोश वाले होते हैं ना, और सहाबा सारे जोशीले थे, सहाबा यंग थे, जो भी उसमें उस वक्त आपके पास थे उनके हौसले बुलंद थे। आप क्यों इनकी वन साइडेड शर्तें मान रहे हैं? और आप कह रहे उमर उमर मुझे पता है जो बात, फिक्र नहीं करो। अल्लाह के नबी ये फतेह? हाँ ये फतेह उमर, ये तो दबने वाली बात है। और वही बात है कि खुद अपने ही दाम में आपसे याद आ गया, अभी खुदैबिया से पलट कर मदीना के रास्ते पे गए हैं। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सरफत नाजिर है। और साहबी जो बयान करते हैं ना हदीस, तो वो कहते हैं अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी पे थे तो जो सवारी के ऊपर एक आवाज़ कांपती ना, इस तरह उन्होंने हदीस बयान की है, इन्ना फतहना लका फतहन, यानी कांपती हुई आवाज़ से ये सूरत नाजिल हुई और लोगों को उस दिन समझ नहीं आई। साहबा कहते तुम फतेह मक्का को फतेह कहते हो, हम सुलह हुदैबिया को फतेह कहते थे, क्योंकि सुलह हुदैबिया की एक शर्त थी कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। अब मुसलमानों ने वो वक्त दावत में आ गए। आप जब इसकी सुनेंगे पूरी डिटेल्स, तो ये साल जो थे ये तो दावत के साल थे। मुसलमान कभी फारिग नहीं होता, मुसलमान इज ऑलवेज ऑन जॉब, ये काम नहीं तो वो नहीं तो वो। नेकियों के तो कई तरीके, सही तरह से खुशियों से इबादत नहीं हो रही तो सब्र कर लो, दूसरे को अकोमोडेट कर दो, ये भी इबादत है। इस सफर में आप देखिए कई चीजें ऊपर नीचे होती हैं। अल्लाह कहते हैं तुम्हारा अजर उधर का काट के इधर बढ़ा दूंगा। बच्चे की माँ रो रहा है, बच्चा री 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 री, वो कहती क्या है मेरी तो नमाजें भी ठीक नहीं, बच्चे पढ़ने नहीं देते। तो उस माँ के ममता और उस सारे चीज में अल्लाह ने सबर में माँ के दर्जे बुलंद कर दिए। तो सुलह हुदैबिया इज अनएंडिंग टॉपिक फॉर मी, लव स्टोरी है पूरी, लीडर और फॉलोअर्स के ताल्लुकात, अमीर और मामूर के ताल्लुकात, टूटे हुए दिल जोड़ने के तरीके आज हम मुसलमान नहीं समझ पाते। थोड़ा सा झुक जाओ ताकि फिर पूरा ऊपर आओ, ये सुलह हुदैबिया आपको सिखाती है। आसान तक रखो शैयद महुआ खैरुल लकुम, तुम किसी चीज को बुरा समझते हो वो तुम्हारे हक में अच्छी होगी। सोच लो अल्लाह ने ये बात तुम्हारे लिए कर दी, तुम क्या समझते हो अल्लाह ने तुम्हें क्या दे दिया। तो लिहाजा गजवा भी इसलिए इसको बोलते हैं बार बार कि ये उसी मुद मद में आता है, यानी सुलह हुदैबिया असल में बगैर जंग के एक फतह थी मुसलमानों की, और मुसलमान टूटे हुए दिलों से वापस आए। और अगले साल फिर अल्लाह ने उमरा भी दे दिया। रजीतु बिल्लाहि रब्बन, उर्दू में कहते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखे, ये है अल्लाह को। आप आए हैं, पीरियड्स हो गए, उमरा नहीं कर पा रहे, हाय मेरी किस्मत बुरी, मेरे पैसे जाया। नो, उमरा करने में आपने 101 गलतियां करनी थी, चांसेस थे, इत्तफाकात थे। आप सब्र करके जो कर सकते हैं वो कर ले, जिससे रोका है ऐसे ही चले जाइए। ये सुलह हुदैबिया आपको सिखाती है, याद रखिए अल्लाह के फैसलों को मानिए, अल्लाह की रजा में राजी रहिए, दूसरों की नेमतों को देख के हसद ना करें, जो आपके पास है उसको शुक्र कीजिए। और जब आप अल्लाह पे डाल देते हैं भाई मेरे अल्लाह ने अजर देना है ना, करके भी उसने देना, तो बे करे दे तो ज्यादा अच्छा नहीं, करने में गलतियों का चांस है, इत्तफाक है। फिर लोग कहते हैं हाय ये क्या हो गया, मैंने तो ये किया, किसी की नजर लग, मेरा कोई गुनाह है? भाई अल्लाह आपको आजमा रहा है, वो पलट जाए, वो समंदर के पास से आप गुजर जाते हैं, पानी का एक घूंट नहीं पी सकते, नमक वाला पानी है। कहिए रब मेरे मुझे आजमाना नहीं, लेकिन अगर मेरे से कुछ हो जाए, मेरे साथ कभी ना भी हो जाए, मैं सबसे पहले कहूंगी रदी तो बिल्ला ही रब, और इतात का अजर इबादत के अजर से ज्यादा है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। और फिर उसके बाद 628, इसमें कुरैश से इस बात पर इत्तफाक हुआ कि मुसलमान काबा में नमाज पढ़ेंगे, यानी ये भी एक वाक़या है जो मेंशन किया जा रहा है। अब हालात साजगार हो रहे हैं फतेह मक्का की तरफ। अल्लाह ने ना नबी को एक पूरे रोलर कोस्टर से गुजारा, और जहां मैं लफ्ज नबी बोलूँ तो सहाबा तो बजाते खुद है। आगे चलते हैं, फिर एक और मार्का मुसलमानों के लिए 629 ईस्वी में गजवाए खैबर, मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर शिमाल मगरब में एक जगह, जहां कुछ यहूद के कबाइल थे जो हर वक्त कॉन्स्परेसिस करते थे, साजिशें मुसलमानों के खिलाफ, वो एक किस्म का उनका अड्डा था, और वहां से फितने बहुत आते थे। अल्लाह ताला ने वहां एक फितना जो उठा उसको ख़त्म करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, और फ़ातह खैबर बनकर वहां से आए। अल्लाह ने मुसलमानों को इसमें भी बहुत, ना सिर्फ ये कि फतह दी बल्कि क्या दिया, मैं एक जुमला बोल दूं तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी, कि नबी के भी घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। सहाबा का तो मामला भी ऐसे ही था, यहाँ तक के खैबर फतह हो गया, फर्टाइल लैंड्स, जरखेज ज़मीनें मुसलमानों को मिल गई। और फतह मक्का के बाद मबाखाते मदीना में जो मुहाजर और अंसार की कॉपरेशन हुई थी ना, वो ख़त्म हो गई, सब वेल ऑफ हो गए, खाते पीते हो गए। और ये वो वक्त है कि जब फिर नबी की बीवियों ने भी मुतालबा कर दिया कि अल्लाह के नबी, अब तो सबके घरों में चूल्हा जल रहा है, तो हमें भी कुछ अनायत कीजिए। सूरत अहज़ाब की आयतें समझ गए होंगे आप, ये फतह खैबर थी। मुसलमानों को जो मिला, मुसलमान इसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और इसके बाद 629 में ग़ज़वा मूता हुआ, मुसलमानों की फतह। जमादिल अव्वल 8 हिजरी थी, और जनूब मगरबी उर्दन यानी जॉर्डन साइड पे ये जगह थी मूता नाम की। बाज़ लोग इसको मौता कहते हैं उर्दू में, लेकिन अरबिक में मोस्टली मूता बोला जाता है। ये दरियाए उर्दन के करीब की जगह थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए, इसलिए इसको गजवा नहीं कहते, जंग या सरिया है। और इसमें मुसलमानों को किसके मुकाबले में फतह हुई, आप कह लीजिए ईसाइयों के मुकाबले में। अभी तक जो जंगें थी ना, ये अरब की थी या यहूद जो अंदर थे। अब इस्लाम का दायरा कार अरब के बाहर के सिरों की तरफ जा रहा है, और इस जंग में मुसलमानों की फतह हुई। और आपने अभी तक जितनी मैंने बोली हैं मुलाहमात नबी, किसी एक जंग में शिकस्त सुनी है, सिवाय एक जंग में भगदड़ मचने के, और वो होती फतह उसमें भी हो चुकी थी। फतह ही हुई थी तभी तो माले गनीमत जमा कर रहे थे ना, लेकिन बाद में आपस के इतना इत्तफाकियाँ और फतफशलू और वतस खबरी हुकुम की नजर हम हो गए, अदरवाइज किसी जंग में मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई। क्या था आपके पास? F-16, जेट, कॉन्कर्ड और पता नहीं क्या कुछ, नथिंग। क्या था? ईमान था। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, आज भी उतर सकते हैं, आज हम मुसलमानों को इसकी जरूरत है। और इसके बाद हम अपने आज के इस स्लॉट का आखिरी कह लीजिए कि हिस्सा, फतेह मक्का, विक्ट्री ऑफ मक्का, मुस्लिम्स वर विक्टोरियस। फतेह मक्का क्या है? अहदे नबी का एक गजवा, 20 रमज़ान। पहले तो आप ज़रा डेट पे गौर कीजिएगा, रमज़ान का महीना है, 20वां रोज़ा है, सन 8 हिजरी है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो 10 जनवरी सन 630 ईस्वी बनता है। रमज़ान में भी जंग होती थी, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती। लोग कहते रमज़ान में नहीं हम निकल सकते कुरान सुनने के लिए, रोज़ा रख के नहीं निकला जाता। अच्छा तो अब क्या है? अब खाना खा के नहीं निकला जाता। सुबह क्या है? अब सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं निकला जाता। आफ्टरनून के आफ्टरनून नहीं निकला जाता। बच्चे आज वीकेंड है, वीकडे वो कहते हैं ना कि ऊँट पे बैठो कहते कोहान का डर है, कश्ती पे बैठो तूफान का डर है। तो अल्लाह के बंदो, कब हम सब अपने ऊपर सोचें? साहबा ने क्या क्या हमारे लिए मिसालें कायम कर दी। फतेह मक्का तो एक कह लीजिए कि ऐसी कहानी है जिस पे जितनी बात की जाए कम है। वही शहर जिधर से 8 साल पहले रातों को निकल रहे हैं साहबा, अल्लाह के नबी कह लीजिए कि वजालना मिम्बई नहीं आई दीम सद्दन, वजालना मिम्बई नहीं सद्दन, और उनकी आंखों में रेत डालते हुए निकल रहे हैं। जहर के खतरा था वो शहर जहाँ से नबी निकले, और उसकी जान की कीमत 100 ऊँट हो। जिंदा और मुर्दा लेके आओ, आज की जुबान में अच्छा लफ्ज नहीं है, इश्तहारी मुजरमों के साथ जो लोग करते हैं ना काम, वो था। और आप 8 साल सिर्फ गुजरते हैं और आप वहाँ फातेह बन के जा रहे हैं। इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, कोई खून नहीं बहा, नो ब्लड शेड, नो बॉम्बिंग, नो ब्लास्ट, नो वेपन। ये है असल बात जिसको देखिए, जो नबी सल्लम के साथ अल्लाह का वादा था ना, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल खुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। ये फतेह मक्का पे पूरा होता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जिस 1-2 स्टेप से गुजर के फतेह मक्का तक पहुंचती है ना, आज के मुसलमानों के लिए भी यही है। ऐसे ही फैसले करो, ऐसा ही मान लो। ये नहीं कि सिर्फ ईमान ईमान, हिकमतें, खारजा पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम के रिलेशन कैसे हों, मुस्लिम्स का अपना मोरल क्या हो। तो गलबे इस्लाम का जो काम था ना, 13 साल मक्का के, वो मक्की दौर सुनिए, वो टिश्यू पेपर लेके सुनने वाला दौर है, बिलीव मी। ये तो हम गलबा सुन रहे हैं, मदनी दौर तो माशाल्लाह मज़े का दौर है। तभी तो इस्लामी कैलेंडर जो है वो हिजरत मदीना से शुरू हुआ, जब मुसलमान हजरत उमर के दौर में ज़रा डेवलप हो चुके, उनको एस्टेब्लिशमेंट मिल गई, तो फिर सवाल था कि अब मुसलमानों का अपना कैलेंडर हो। हर ऑर्गेनाइजेशन शुरू में ऐसे ही काम कर रही होती है, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो वो अपनी चीज़ें खुद ही जनरेट कर लेते हैं। तो कहा कैलेंडर बनाओ, कब बनाओ? ओके, नबी की पैदाइश, जिसको आज की ज़ुबान में आप डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, रबीउल अव्वल की 12 कह लें या 9 कह लें, चलिए। साबन का नहीं, वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैदा हुए थे, तो हम तो इस्लाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह से शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, उन्हें ये नहीं चलेगा, पूरा कुरान गवाह है कि अम्बिया कराम की डेट ऑफ बर्थ कहीं है ही नहीं, ये तो क्रिश्चियनिटी से चीज़ें आई और अपने उसके क्या क्या रंग बना लिए। अच्छा भाई क्या करें फिर? कहा फिर ऐसा करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दिन नबूवत मिली, एक रब इस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक खलक अल इंसान मिन अलक, इससे शुरू कर लेते? बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद तो मारें थी, उसके बाद तो टॉर्चर्स थे, मक्की दौर तो सारा जुल्म बर्बरियत था। सूरह अनकबूत खोल लीजिए, दुखी लोगों की सूरत है। अलिफ लाम मीम, अहसिबन नासु यतरकु यकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया कि वो इसी तरह आजमाए जाएंगे और कलमा पढ़ने पे उनकी आजमाइश नहीं होगी? कहा नहीं, हम इस्लामी कैलेंडर का आगाज डिप्रेसिव मोड में नहीं शुरू करते। अच्छा फिर क्या करें? हाँ, हिजरते मदीना। हिजरते मदीना क्या है? एक डोर ओपन हुआ था मुसलमानों के लिए, अल्लाह ने आपको एक बिल्कुल कह ले कि नया दरवाजा खोलकर दिखाया, तो इस्लामी कैलेंडर हिजरते मदीना से शुरू हुआ, उसी से लेके आज तक चल रहे हैं। आपको पता है ये 14 समथिंग चल रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। क्यों हुआ? वही लोग जिन्होंने घर आए लोगों की नकदरी की और मक्का में उमरा ना करने दिया और बहुत मुंह खोल के बात कर दी कि 10 साल तक मुसलमानों के और मक्का वालों के बीच में जंग नहीं होगी, 2 साल भी सब्र ना कर सके, और इसी तरह दूसरे कबीले की मदद कर दी। बस एक रूल तोड़ा था उन्होंने, और अल्लाह के नबी ने कहा हम मक्का जाएंगे, खामोश था। गज़वाए फतेह मक्का की अगर आप स्टोरीज पढ़ें, पढ़नी है तो आप जाके सूरत मुमतहिना पढ़ें। हातिब बिन अबी बलता, अल्लाह के नबी ने अनाउंस नहीं किया, क्लोज सर्कट, जैसे अंदर के एडमिन्स को तो कई चीज़ें पता होती हैं, उनको पता था कि अल्लाह के नबी मक्का की तरफ जाएंगे, ओपनली अनाउंस नहीं था, क्योंकि अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे कि खबर आम हो और मक्का वाले जो हैं वो तैयारी कर लें और फिर खूब जंग लगे और ब्लड शेड चाहिए नहीं उधर। हातिब बिन अबी बलता एक सहाबी, जिनके अपने बीवी बच्चे अभी मक्का में ही थे, हिजरत के बाद ये आ चुके थे, वो नहीं आए। इनके दिल में कुछ ख्याल आया, इन्होंने खत लिख के मक्का वालों को भेज दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, अपनी फौजें लेकर अपना इंतजाम कर लो। अल्लाह के नबी की दुआ थी कि अल्लाह मेरे दुश्मन के सर तक पहुंचने से पहले उनको खबर ना हो, अचानक हमला हो ताकि लड़ाई ना हो और हम बगैर किसी खून बहाने के मक्का को कॉन्कर कर लें। अल्लाह ने वही से बता दिया कि ये खबर तो पहुंच गई है, फातिह बिन अबी बलता के ऊपर एक जुर्म साबित हो रहा है। अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, क्या हुआ है? हजरत अली के साथ एक गालिब अकदर मिकदाद को भेजा कि जाओ फुलां जगह पे सारा नाम की एक लौंडी खत लेके जा रही है, वो लेके आओ। हजरत अली और वो सहाबी चल पड़े, घोड़े को एड़े लगा दिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपके मेरे अमल का नुक्ता है। हजरत अली चल पड़े, कहा क्यों? रुके जरा, आहिस्ता, हो सकता है वो औरत इधर से उधर कहीं मिल जाए। हजरत अली ने कहा अल्लाह की कसम, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो रोहाख नाम की जगह पे मिलेगी तो वो वही मिलेगी, और वहां गए तो वहां औरत मौजूद थी, और ये वही औरत थी जो गजवे बदर के बाद मदीना में आके रहने लग गई थी, प्रोस्टिट्यूशन का काम था, गाने बजाने का काम करती थी। कहने लगी सारे सरदार तो आपने मार दिए, अब हमारा तो कोई काम ही नहीं चलेगा, तो मैं तो मक्का छोड़ा ही हूँ, तो मुझे इधर रखे। हालांकि वो सिपाही थी, इधर की खबरें उधर, उधर की खबरें उधर करती थी। कहा कि खत दे दो, कहेगी मेरे पास कोई खत नहीं है। हजरत अली ने कहा खत दे दो, हमें पता है तेरे पास है, नहीं दोगी तो तुम्हारी तलाशी होगी। थ्रेट किया, बालों के अंदर मीडियो में लिपटा हुआ खत निकाल कर उस औरत ने दे दिया। खत क्या था? वो तो एक हजरत खातिब बिन अबी बलता के खिलाफ पूरा डॉक्यूमेंट था, खातिब बिन अबी बलता की तरफ से मक्का के सरदारान के नाम, आप नबी आ रहे हैं, तुम ये कर दो वो कर दो। अब वो खत खुल गया, आ गया तो हजरत उमर के सामने, अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए मैं खातिब की गर्दन काट दूं, क्योंकि जंगी राज खुल गया। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं उमर, हातिब बद्री साहब ही है, और अल्लाह ने उनकी खताएं माफ़ की। शुरू में काम करने वालों को अल्लाह इतना ऑनर दे देता है कि पहले ही कहता है गलतियां भी माफ़, जन्नत मिलेगी। हातिब उनमें से थे, जाओ बुलाओ हातिब को, या फिर मैसेज लिखिए अपने लिए, एक बंदे की बात सुन के किसी के खिलाफ एक्शन ना लीजिए, अगले को बोलने का मौका दें। और ये आपकी खानदानी झगड़ों और लड़ाइयों में भी बहुत काम आएगा असूल, और दीन के काम में तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता। आप बहुत अच्छे अच्छे बंदे खो देंगे किसी एक की स्टेटमेंट पे, किसी को काम दे दें या ना दें, या दिया वो वापस ले लें। खाती बोलो, कुछ कहना चाहते हो? काला के नबी, मैं बस इतना कहूँगा, ना मैं इस्लाम से हटाऊँ, ना मेरे में निफाक है, और आपके ऊपर मेरा उतना ही ईमान है। मेरा ईमान है कि मैं ये खत ले भी दूंगा ना, देखिए बड़ा प्यारा उनका एक एनालिसिस है, मैं ये खत दे भी दूंगा ना, फिर भी जीतना आप नहीं है, क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं। मैंने सिर्फ मक्का वालों पे एक एहसान किया, क्यों किया? कि मेरे बीवी बच्चे उधर हैं, मेरे इस खत की आड़ में जब जंग छिड़ेगी तो वो मेरे बीवी बच्चों को नुकसान ना दे। क्यों? कुरान ने क्या कहा? बेशक औलाद और बीवी बच्चे तुम्हारे दुश्मन है। सूरह मुमताज़ ना कहते हैं, मौजूद है, आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए किया, अल्लाह के नबी ने कहा जो अल्लाह ने तुम्हें माफ़ किया। ये दिल, ये जिगरा चाहिए होता है। और खत वापस आ गया, अल्लाह के नबी निकले राजदारी के साथ, और जब ज़रा सी खबरें भी आने लग गई कि कुछ गड़बड़ है, अबू सुफियान ने आकर मदीना मल लिया, उसको भेज उसको भेज उसको भेज के नबी को समझाएं। अपनी बेटी के ऊपर कह रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि अपने शोहर से कहो कि ना जाए, माफ़ कर दे। नो रूल्स जो ब्रेक करेगा उसके लिए नो एक्सक्यूज। और फिर वही हुआ, मक्का फतह हो गया। अंदर के बुत तो पहले के टूटे थे, बाहर के भी टूट गए। अल्लाह के नबी सल्लम ने मक्का को फतह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डिक्लेरेशन थी इस बात की कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी के सच्चे रसूल होने की दलील थी, और मक्का आज़ाद हुआ। अब ज़रा जो बातें इसमें से है ना, वो अपने ज़रा हम थोड़े छोटे छोटे दिलों और दिमागों पर ले लें। 13 साल मक्का के, 13 ईयर्स, यहाँ तक दो दफ़ा गिन के यहाँ रुक जाए, 8 साल मदीना के, कितने बन गए टोटल? 21 ईयर्स। 21 साल तक अल्लाह के नबी की नबूवत के बाद, ये नहीं कह रही कि बिफोर प्रॉफिट हुड, मक्का में बुत थे, लात मनात उज्जा यौग यौज़ नसर बुतों की, उनकी 360 बुत रखे थे, वो अपनी बातें करते थे। नबी ने जाकर कोई एक वहाँ तहरीब कारी नहीं की, रात में जाकर तोड़ा थे, कोई अग्रेसिव एटीट्यूड अख्तियार किया? क्या किया मक्का में? ये तो मक्की दौर में सुनेंगे ना, आज उसकी ज़रूरत है। एक टीम तैयार की, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। आज के लीडर्स और आज के टीचर्स को पढ़ाना है तो इस थीम को लेके पढ़ाएं, वरना खाली किताबें पढ़ पढ़ कर बात नहीं बन रही। इतनी मस्जिदें बन गई नमाजी नहीं है, आज मुसलमानों में रूह नहीं है, दीन की वो नहीं है। यानी कह लीजिए कि फतेह मक्का के नतीजे में अल्लाह का वो वादा पूरा हुआ कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल खुदा व दीन अल हक्की लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, लियुज़हिरहु, ताकि इसको जाहिर कर दे सारे अदियान पे। 21 साल के दुश्मन सामने खड़े हैं, कांप रहे हैं कि आज पता नहीं मोहम्मद हमारे साथ क्या करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप कहते हैं मैं कहूंगा तुम्हें जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। वो तसरीब क्यों आया है, गफरा क्यों नहीं आया, ये जाना है तो फिर आप इंडेक्स क्लास में आइए, मुतरादिफातुल कुरान, क्या फ़र्क होता है लफ्ज़ तसरीब में और यग़फिरा में। लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए आपको। दुश्मन सामने खड़े हैं, सबको माफ़, जो अबू सुफियान के घर में चला गया उसके लिए माफ़ी, वो ज़रा ऑनर पसंद करते थे, चलो उनको थोड़ा ऑनर दे दो, उनका घर हम कह लीजिए कि अमन की जगह बन गया। और फिर बुत तोड़े, अपने हाथ से बुत तोड़े, अपने ही दामाद के साथ औरों को भेज के ऊंची कब्रें बराबर की। इस मुल्क की जो सबसे खूबसूरत चीज़ आप फील करते होंगे यकीनन, कि यहाँ कोई दरगाह नहीं है, कोई कब्र नहीं है ऊंची, कोई आस्ताना नहीं है नियाजी, अपने मुल्क में जाकर बाय रोड सफ़र कर ले, ये आस्ताना शरीफ, ये फला मज़ार शरीफ, ये उर्स शरीफ, और दिल करता है कि खून के आंसू रोएं, कि नाम बदल दें अपने मुल्क का। कहाँ पाक किया हमने उसको बुतों से, कहाँ पाक किया हमने उधर दूसरी चीज़ों से। चले, ये तो जाहिल लोगों की बुत परस्ती है, और पढ़े लिखे लोगों की बुत परस्ती दौलत, डॉलर ऑलमाइटी, वी वर्शिप डॉलर, वी वर्शिप मनी, फेम, ब्रांड्स, कितने गम है, वो कहते हैं कितने जख्म है सीने में। तो आज हम फतेह मक्का पे रुकेंगे, लेकिन इस सब को सुनने और पढ़ने के बाद आपका मेरा क्या फर्ज है, आपकी मेरी क्या जिम्मेदारी है? बस सुन लिया, कुछ महसूस ना करें, नहीं, अल्लाह के वादों पे यकीन कीजिए। तो मैं चंद चीज़ें मदनी दौर की आपके लिए खुलासे के लिए रखती हूँ। मदनी दौर किसे कहते हैं? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी से शुरू होकर विसाले नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मदनी दौर कहलाता है। अगला सवाल, क्या नबी सल्लम मक्का से हिजरत करके बराह रास्त मदीना आए? जवाब, नहीं, आप पहले कुबा की तरफ तशरीफ़ ले गए। अगला सवाल, कुबा आने के बाद आपने वहाँ पहला काम क्या किया? जवाब, मस्जिद कुबा की तामीर की। आप भी किसी मुल्क में तो सबसे पहले अल्लाह के घरों की फिक्र करें, अपने घर तो बनते ही रहेंगे। चलिए, मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद, जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी। अल्लाह हमें भी ऐसी मस्जिदें बनाने की तौफीक दे। नूरुल कुरान के बहुत सारे इंस्टीट्यूट अल्लाह ने छोटे बड़े बनाए हैं दुनिया में, मस्जिद कभी बनाने का सोचा ही नहीं था, लेकिन जब जोहराबाद में मसरूफियात बढ़ती गई, चीज़ें, पहली मस्जिद इस वक्त बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। नूरुल कुरान मस्जिद जोहराबाद में, माशाल्लाह, साथी उसमें अपनी खुशी से हिस्सा डालते हैं। हमने कभी चंदे की दावत नहीं दी, लेकिन यह है कि वो अब रमज़ान में हमें उसका एक हॉल पूरा करके, तो उसको पूरा करना है। आप सब दुआ कीजिए कि अपने उस गोल को वो अचीव करें, और वहाँ फिर दिन रात जो काम हो वो हम सब के लिए आंखों की ठंडक बने। तो पहली मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा में चंद दिन के आम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। मदीना में आपका शानदार इस्तकबाल हुआ। कौन सी पोइम पढ़ी थी? तलाउ बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, वजब शुक्रु अलैना मादा लिल्लाहिदा। इन पहाड़ों से जो है सुए जुनूब, 14वीं का चांद हम पर चढ़ा, कैसा उम्दा दीन और तालीम है, शुक्र वाजिब है हमें अल्लाह का। साहबा कहते हैं, मदीना की हिस्ट्री में सबसे रोशन दिन जब नबी सल्लम का चेहरा मुबारक मदीना की ज़मीन पे नज़र आया, और सबसे तारीख दिन मदीना की ज़िंदगी का जब प्यारे नबी का विसाल हुआ। अगर हम मदनी ज़िंदगी के मराहिल देखें स्टेप बाय स्टेप, तो तीन बड़े हिस्से, टोटल साल कितने हैं? 10, 10 साल है। 10 साल का दोबारा अगर आप करिए ब्रेक डाउन, जिसको कहते हैं, तो तीन हिस्से लिख लिए, लिखना चाहें, हिजरत से हुदैबिया तक 6 साल, दूसरा हिस्सा है हुदैबिया से फतेह मक्का 2 साल, हमने ये दो आज कर लिए माशाल्लाह। तीसरा है तकरीबन सारे अरब का कबूल इस्लाम, जो आखिरी 2 साल में है। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता कितनी किस्म के लोगों से था? तीन किस्म, जवाब लिखिए तीन। नंबर एक, मुखलसीन साहबा कराम, दिल दिमाग से थे, क्योंकि पीछे से ट्रेनिंग लेकर आए हुए थे, कुरान पढ़कर ईंटे बने हुए थे, ईमान की ये पहाड़ थे, वो ऐसे लोग नहीं हिलते, वो फिर कहते हैं जो होगा कर जाएंगे। कुरान बैठकर पढ़ लें, एक कोर्स कर लें, फातिहा से नाज तक कुरान सीने में डाल लें, अल्लाह आपको भी कानम बुनियानो मरसूस की तरह बनाकर फिर आपसे वो काम लेगा जो आपकी नस्लों से लेना है अल्लाह ने इंशाल्लाह। दूसरे, मुशरिकीने मक्का थे, जो रहते मक्का में थे लेकिन मदीना के लोगों के साथ मिलकर आपको तकलीफें देते थे। और तीसरे, यहूदे मदीना थे। अगला सवाल है कि मदीना हिजरत के बाद सबसे पहले अल्लाह के नबी ने आते क्या किया, इब्तदाई इकदाम क्या थे? नंबर एक, मस्जिद नबी की तामीर की। मस्जिद नबी क्या थी? एक सेंटर था, मरकज कह लें, हब था ना, जैसे कोई भी जगह तो उसका रिसोर्स सेंटर, और मस्जिद नबी की हैसियत एक इज्तमाही मरकज की थी, कम्युनिटी सेंटर था। ये बयक वक्त इस्लामी अदालत भी थी, पार्लियामेंट भी थी, ईवान भी था, तरबियत गाह भी थी और इकामती दरसगाह भी थी, वहाँ लोग रहते थे। दूसरा काम, जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, इस्लामी रियासत का क़याम। आपने वो मेथडोलॉजीज बनाई जिस पे इस्लामिक मुल्क खड़े हों। आप कह सकते हैं इस ज़मीन पे पहला मुस्लिम मुल्क मदीना था, अल्लाह के नबी ने इसकी स्ट्रेटजीज बनाई। फिर अगला काम क्या किया? अंसार और महाजरीन के दरमियान मवाखात, भाईचारगी, प्रेशर को और बोझ को बांटने वाला कितना प्यारा हाल है। आपके घर 20 लोग आ जाए फौरन खाने पे, और ऐसा नहीं कि फ्रिज भी भरे पड़े और फ्रीजर भी और पेंट्रीज और एक क्लिक पे घर से बाहर से भी खाना आ जाए, नहीं सफेद पोशी है। तो 20 लोगों का खाना आप कहाँ से खिलाएंगे उनको? तो 20 लोग एक एक मेहमान को घर ले जाएं, तो एक बंदे का खाना तो घरों में होता है। ये किया था अल्लाह के नबी ने। आज अमीर मुल्क गरीब मुल्कों का बोझ उठा ले, मुसलमान सारे ही अच्छे हो जाएंगे। चलिए क्या फ़ायदे हुए, सवाल लिखिए। मवाखाते मदीना के क्या असरात हुए? नंबर एक, महाजरीन को मदीना में ठिकाना मिल गया। मुआशरे में कोई मुआशरती यानी इकोनॉमिकल डिसऑर्डर या बुहरान पैदा नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, कौमी और नस्ली इख्तलाफात का दरवाज़ा बंद हो गया। ये जो मक्की मदनी मुहाजर अंसार का झगड़ा, अरबी गैर अरबी हम देखते हैं, ये उस दौर में नहीं था। अगला आपका काम क्या था मदीना में आने के बाद? यहूद से मुआहदा किया, जिसको हम मीसाक़े मदीना कहते हैं। यानी उस वक्त के जो इलीट क्लास थी, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल थे लोग, उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर राहो रसम बनाई, और उस मुआहदे की बदौलत मदीना में शहरी रियासत का आगाज़ हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रियासत के बेताज बादशाह थे, सरबरा तस्लीम किए। दे हैव टू, यहूद के पास कोई चॉइस नहीं थी, इधर रहना है तो इस शख्स को अपना लीडर मानो, ये तुम्हारा यानी कह लीजिए कि जो भी फर्स्ट पर्सन होगा। और इस मुआहदे के जरिए मजहबी आज़ादी का असूल वज़ा हुआ कि ठीक है तुम अपने दीन पे रहना चाहते रहो, लेकिन तुम अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ इस्लाम हो गए। अगली चीज़ जो मदीना के अंदर आने के बाद बहुत मशहूर चीज़ हुई, यानी फिफ्थ सिक्स होगी मेरा ख्याल है, जिहाद की इजाज़त मिल गई। 13 साल तक कटते रहे, पिटते रहे, मारे खाते रहे, लेकिन कुफ्फु अईदियकुम हाथ नहीं उठाना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की एक ऐसी जमात तैयार की जो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए हर वक्त तैयार थी। और जिहाद का असल मकसद कलमे हक की सरबुलंदी था। इब्तदा में मक्का से शाम जाने वाले तजारती रास्तों पर गश्ती दस्ते बिठाए गए, और फिर यही रिसोर्स बने जो आज हमने खुलासा किया है अल्लाह के नबी की जंगों का। ये टीम कहाँ से आई थी? मदीना में बैठ के तैयार हुए थे। साबा वर नॉट असेंबल्ड एंड मेड इन मदीना, वो इम्पोर्ट किए गए थे मक्का से। ये जो आप इस वक्त की सदी है ना, ये जो सेंचुरी है, आप सबको भी कहूँगी, चाहे वेस्टर्न मॉम्स हैं या इस्लामिक मुल्कों की मॉम्स हैं या अपने देसी मुल्कों में रहने वाली हैं, अपने बच्चों को रिसोर्स बना जाए, सहाबा वाला ईमान भर दें और ज़िंदगी उनकी आसान हो जाएगी। फिर उसके बाद नबी सल्लम के सराय और गजवात, जिस पे आज बात की है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली हिजरी में कौन कौन से आए थे, मैं अब स्टेप बाय स्टेप बोल देती हूँ, कुछ छोटे बड़े नाम आएंगे इसमें। पहली हिजरी में जो पेश हुए वो सरिया सैफुल बहर था, सरिया राबिक था और सरिया हर्रार था। सन 2 हिजरी के वाक़ देखें तो उसमें गजवा अबवा, गजवा बवात, गजवा सफवान, गजवा ज़िल शीरा और सरिया नखला था। सरिया का मतलब कि अल्लाह के नबी खुद नहीं थे उसमें। और जो दूसरे साल में बहुत अहम वाक़ा हुआ, ज़रा सोचें, आप सबको ही पता है वैसे क्या होगा, एक आयत का टुकड़ा पढ़ूंगी समझ जाएंगे। सयकुलु सुफहाउ मिनन्नासी मा वल्लाहुम, जी किबले की तब्दीली, ये सन 2 हिजरी में हुआ। नमाज के दौरान किबले की तब्दीली का हुक्म मिला। आज ऐसा होता लड़ाइयाँ शुरू नमाज में हो जाती, पिछली सफ़े आगे अगली पीछे, फ़ायदा क्या हुआ? इस मौके पे मुसलमानों की सफ़ें कई मुनाफिकों से पाक हो गई। सहाबा के दिल कंपस की तरह थे, पुरकार, जिधर नबी उनका दिल मोड़ता था, बात मोड़ता था, वो चल पड़ते थे। हत्ता कि एक सहाबी नबी के साथ पढ़ कर गए और अगली जगह जाकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं उधर इस तरह मुँह करके नमाज पढ़ के आया हूँ। सहाबा ने उस सहाबी की बात पर किबला बदल लिया, सच्चे थे, झूठ नहीं था उनमें। अगली चीज़ सन 2 हिजरी की, जो अभी हमने थोड़ी सी डिटेल से देखी, गज़वा बदर रमज़ान 2 हिजरी में हुआ, जिसको यौमुल फुरक़ान कहते हैं। 313 का मुकाबला 1,000 के लश्कर से हुआ, फरिश्तों की आमद थी इसमें, और अल्लाह के नबी की अपने रब के हजूर दुआएं थी। कुरान क्या कहता है, सूरत अनफाल आयत 9, इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमित्तुकुम बिअल्फ मिनल मलाइकति मुर्दफीन। और वो मौका याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जवाब में उसने फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पैदर पे कंटिन्यूस मुस्तकिल 1,000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। यौमुल फुरकान क्यों कहा कि हक और बातिल में फर्क हो गया, मुश्रिकीन को इबरतनाक शिकस्त हुई, अबू जहल समेत 70 लोग मारे गए और कसीर माले गनीमत हाथ में आया। गज़वे बदर के बाद भी कुछ मारूफ वाक़यात हुए, क्या? गज़वे बनु सुलैम, गज़वे बनु कैनका और गज़वे सुवैक, सत्तू खाने वाली जंग। सत्तू दुश्मन छोड़ के भाग गए थे, मुसलमानों को माले गनीमत में मिल गए, इसलिए इसको गज़वे सुवैक कहते हैं। इसके बाद चलते हैं सन 3 हिजरी पे। इसके वाक़यात में सबसे अहम वाक़या गज़वे उहद है, 8 शवाल 3 हिजरी में हुआ। इस जंग में मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई खुलकर सामने आ गया, शौत के मुकाम से 300 लोग साथ लेके चला गया। 1/3 लोग उस दौर में भी देखिए बातों में आ गए, अल्लाह माफ़ करे हमें। फिर हजरत हमजा समेत 70 सहाबा शहीद हुए, खुद नबी सल्लम भी जख्मी हुए, और शिकस्त का सबब आप सब जान चुके हैं, नबी की इताअत न करने की इज्तिहादी गलती था। फिर इसमें एक अमेजिंग अनबिलीवेबल जंग, गजवा हमरुल असद, हमराउल असद। गजवे उहद के बाद मदीना पहुंचते ही अगली सुबह फिर जंग के लिए निकलने का ऐलान किया। मक्की लश्कर डर के मारे टकराव से पहले ही वापस लौट गया, और क्या कहा सहाबा ने? हसबुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। जब अबू सुफियान अपने लश्कर को बचाकर वापस मक्का की तरफ चले गए, तो रास्ते में उनको ख्याल आया, ये मैंने क्या किया, मुसलमान तो टूटे पड़े थे, जरा सी हिम्मत करते तो मदीना में चले जाते। कहा अच्छा चलो वापस चलते हैं। अब जरा देखिए, ये इसको कहते हैं लीडर मेंटेलिटी। वो लीडर थे, अच्छे लीडर थे, ठीक है, उस वक्त तक कुफर पे थे तो काफिरों के थे। इधर अल्लाह के नबी के दिल में क्या आया, अरे वो वापस ना आ जाए, ये वो वेव्स मिलती है ना, इधर से इधर वाइव्स आती हैं। आपने साहबा को एक ऐलान किया, हम अबू सुफियान का पीछा करेंगे। इधर से साहबा चल पड़े नबी के साथ, भूलते भी नहीं थे हम होते। अब मैं आपसे कहूँ चलिए हम दोबारा अगला सेशन शुरू करते हैं, तो फिर जरा आप अपने फेसेस देखिएगा, फिर आपको जो रोना आएगा, जो अपने ऊपर तरस आएगा, हालांकि इस माहौल में बंदा अगर ना सुने तो कहाँ सुने, लेकिन आप देखिए कि साहबा नहीं बोले। जब अबू सुफियान साहब को पता चला कि ओहो मोहम्मद तो आ गए, आप तो अंदर से तो कावड़नेस बुजदिली होती है कुफर में, अब क्या करें, अब इज्जत का मसला बन गया। एक शख्स जो उधर से तिजारत के लिए जा रहा था, अबू नईम उनका नाम था, अबू सुफियान ने उसको कुछ पैसे दिए रिश्वत, जाकर ना मदीना में खबर फैला दो मुसलमानों के लश्कर में कि अबू सुफियान तो नई कुमक लेकर आ गए हैं, यानी और न्यू फौज आ गई है बड़ी फ्रेश, तो डर जाएंगे, चाहते ये थे कि चले जाए। जब ये खबर सहाबा तक पहुंची तो क्या हुआ, कुरान क्या कहता है, फजादतहुम ईमाना फ़कालू हसबुनल्लाह व नेमल वकील, उनके ईमान और बढ़ गए और उन्होंने कहा मैं अल्लाह ही काफ़ी है, अबू सुफियान जितना मर्जी लश्कर ले आए, मेरा रब हमारे साथ है। अब जब वो ना पलटे वापस आ गया तेरे, अबू सुफियान साहब को और कुछ ना सूझी तो वापस चले गए। मुसलमान कितने दिन हमारा उल असद जगह पे बैठे रहे, आओ कोई माई का लाल है तो हम मामला करते हैं, कोई वापस ना आया। उधर से कुछ तिजारती काफले, कुछ सामान छोड़ जा, इतना सामान अल्लाह कहता है फयनकलबू बिनेमते मिन अल्लाह। बस इन जुमलों पे मैं अपना आज का सेशन पूरा करूंगी। आज भी वही अल्लाह है, आज भी वही इस्लाम है, आज भी वही कुफर और इस्लाम की जंग है, आज वही हक और बातल के मार के हम बदल गए। किसी ने कहा तुम बहुत कहते हो फरिश्ते आते हैं फरिश्ते आते हैं, तो आज क्यों नहीं आ रहे, इतने तो मुसलमान पिट रहे हैं। तो किसी ने उसको बड़ा जले हुए दिल से जवाब दिया, उसने कहा फरिश्ते आए थे, फिर उनको कहीं कोई मुसलमान नजर ही नहीं आए, वो चले गए। इस्लाम और मुसलमान दो मुख्तलिफ चीज़ें बन गई आज। इस्लाम तो आज भी खूबसूरत है, अल्लाह ने बेहतरीन अल्यौम अकमल तलकुम दीनकुम वला दीन दिए, आज हम बदलें और सोए हुए हैं। डोंट बी लेजी, डोंट बी लेथार्जिक, दिल ना मैला करिए। आज इस्लाम का जो मुसलमान शेर है ना, वो सो गया है, उसको एक वेकअप कॉल, वेकअप मुस्लिम। और ये हमारी यूथ उठ रही है माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ने आप जैसी माएँ जिनको कुरान से मोहब्बत दी है ना, उनके घरों से आज के अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बाकी सहाबा जैसे ईमान वाले बच्चे उठाने हैं। बस ज़रा सत पानी दीजिए, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, कुरान का पानी अपने बच्चों को दें। आप भी और मैं भी मिलकर फातिहा से नाश्ता कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे, कुरान की तहफीज़ से हम मुसलमान नहीं बचेंगे सिर्फ, तजवीद सही होगी नहीं बचेंगे जब तक इसका फहम दिलों दिमाग में नहीं आएगा। अल्लाह हमसे ये काम ले लें। जजाकुम अल्लाह खैर। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।